स्थितेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रणमो अज्जायाणं प्रणमो लोये सौवसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते पुच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवलीमणिनं।
ये कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार की हम 73 नंबर की गाथा देख रहे हैं और ये 73 नंबर का गाथा जो है वो कर्ता कर्म अधिकार में हमने देखी थी। देखो यहाँ हम पृष्ठ क्रमांक 58 पर आए हुए हैं। कल जो बात चल रही थी अपनी, ये ऊपर से दूसरी लाइन में हम आए थे। यहाँ कह रहे हैं एम आत्मा मा निश्चय करेने, तो ये कैसा था कि पहले क्या था वो देखेंगे। ये इसी लाइन से चालू होता है, पहली लाइन पोताना अज्ञान वड़े आत्मा मा उत्पन्न तथा जे क्रोधादि भावो ते सर्वने क्षय करूं छू। अभी तक ऐसा मान रहा था वह कि ये क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, वह मेरी क्रिया है और मैं उसका करता हूँ। अभी तो उसने ये सब पहले अज्ञान भाव में ऐसा वह मानता था, अब कह रहे हैं अभी अपने को उसने जाना। एम आत्मा मा निश्चय करी ने घना वखती पकड़ेलू जे वाहन तेने जेने छोड़ी दीदू छे एवा समुद्रना वमरनी जेम जेने सर्व विकल्पों ने जल्दी वमी नाख्या छे एवो निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा ने अवलंबतो एटले विज्ञान घन थयो थको आ आत्मा आश्रवोती निवर्ते छे। देखो अभी यहाँ क्या बात है पहले समझेंगे हम। यहाँ तीन बातें हमने देखी हैं कि समुद्र जहाज यानी यहाँ वो क्या लिखा है वाहन वाहन समुद्र वाहन और वमल तीन बातें हैं। तो यहाँ ये तीन बातें जो है वो इस तरह घटाई है कि ये जो जहाज होता है यानी यहाँ वाहन होता है वह उस वमल में से कब निकल सकता है कि वह वमल जब शांत हो जाए यानी ये ऑल ऑफ ए सडन ये वर्लपूल चालू होता है और वो अपने से ही बंद हो जाता है। तब बाय चांस अगर वो वर्लपूल में यानी यहाँ वमल में कोई जहाज आ जाए तो उसी में वो चक्कर खाता रहेगा, उसी में अटका रहेगा और जब वो शांत हो जाता है तो वो बाहर निकल सकता है। तो वहां कहते कि उसने उसको छोड़ दिया, ये तो कहने की बात है ख्याल में। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि जब यह समुद्र है वह समुद्र में जो उत्पन्न हो रहा है जो वमल है उस वमल की शांति जब हो जाती है तो वो वाहन को छोड़ता है, वाहन को क्या वाहन ही है ना वाहन को जहाज को छोड़ता है। वैसे यहाँ समझा रहे हैं आत्मा जो है वह आत्मा विकल्प की जाल में फंसा हुआ है, वमल है वो विकल्प, वो वमल है और जब वो विकल्प शांत हो जाए तो वह आश्रयों को छोड़ देता है, बस इतनी ही बात है। अभी आपको कंपैरिजन करनी है तो इसको हम इस तरह से ध्यान में रखने के लिए रख सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो समुद्र है वह समुद्र इज इक्वल टू आत्मा, वाहन इज इक्वल टू आश्रव और वमल इज इक्वल टू विकल्प। ख्याल में ये कल जो अपना घोटाला हो रहा था ना कुछ कुछ, तो मैंने आत्मा को जहाज माना था, तो वैसा वो नहीं है। ख्याल में तो यहां कहते समुद्र है वह आत्मा है, और आत्मा में ही विकल्प उठते हैं, तो विकल्प उठ रहे तो वह उसमें जो कोई आश्रय हो रहा है इस जीव के वह छूट नहीं रहा है, तो विकल्प जब शांत हो जाएंगे तो आश्रय होना बंद हो जाएगा। तो विकल्प कब शांत होंगे, तब कहते हैं कि जब यह जीव अपने स्वरूप का अनुभव करेगा यानी स्वरूप को जानेगा उसमें स्थिर होगा, तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब यहाँ 100% जो उदाहरण है वो लागू नहीं होता है, लेकिन 90% नक्की लागू होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं?
देखो हमने वो पहले पृष्ठ पर भी देखा था ना, अंतिम 3 लाइन
कहाँ 57
अभी अभी ये टीका में, हाँ
टीका में
57 पेज
57 अच्छा
देखो नीचे से तीसरी लाइन, तेथी हवे हूँ समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति थी निवृत्ति वड़े, आज आत्म स्वभाव मां निश्चल रहतो थको, ऐसा होने से क्या होता है, समस्त परद्रव्य ना निमित्त थी विशेष रूप चेतन मां थता जे चंचल कल्लोलो, ये पर्याय में होने वाली जो चंचल कल्लोले वो यानी वो विकल्प, तेमना निरोध वड़े यानी वो विकल्प मिट जाएंगे, आने जने आ चैतन्य स्वरूप ने ज अनुभव तो थको, विकल्प मिटकर अभी तक तो विकल्प में ही अटका हुआ था, अब हम भी वो ध्यान के नाम पर क्या करते, विकल्प को जोर जोर से उसी के चक्कर चलाते रहते हैं, उसी में अटके हैं ना तो विकल्प तब तक कार्यकारी थे जब तक आत्मा का निर्णय नहीं हो रहा था सही, अभी ध्येय का निर्णय हुआ है, अब ध्येय को जानते रहना है, हम कहाँ अटके हैं विकल्पों में, जब आत्मा का लक्ष्य करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा कि आ चैतन्य स्वरूप ने ज अनुभव तो थको, अभी हम किसका लक्ष्य कर रहे हैं विकल्पों का, अभी आत्मा का ही लक्ष्य करने से आत्मा का ही अनुभव करने से विकल्प भी मिट जाएंगे, फिर उसके लिए क्या होगा, तो पोताना अज्ञान वड़े आत्मा में उत्पन्न थता जे आ क्रोधाधिक भावो ते सर्वने क्षय करू छू, विकल्प भी राग है ना, विकल्प की भूमिका है तब तक राग है, अभी उसको भी छोड़कर अंतरंग में लीन उसमें हो गया तो ये क्रोधाधिक भाव सब मिट जाएंगे, फिर आगे वो जहाज की वगैरह उपमा दी उन्होंने, भावार्थ में अभी इसी बात को और समझाएंगे, आप पढ़ेंगे
ठीक है, तो देखो अभी फिर से वही पढ़ेंगे तो आपने का आगे की बात समझेंगे, एम आत्मा मां निश्चय करी ने, तो ये अभी उदाहरण के माध्यम से समझाते, घना वखत थी पकड़ेलू जे वाहन तेने जेने छोड़ी दीदू छे एवा समुद्र ना वमलनी जेम, यानी वो समुद्र का वमल कैसा होता है कि जब तेजी में होता है तो जो आवे उसको वाहन को पकड़ लेता है और वह ठंडा हो जावे तो वाहन अपने आप निकल जाता है, वैसे एवा समुद्रना वमरनी जेम जेने सर्व विकल्पों ने जल्दी वमी नाख्या छे एवो निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा ने अवलंबतो, आत्मा कैसा है निर्विकल्प है और चलायमान नहीं होता है अविचलित है, ऐसे आत्मा का अवलंबन लेने से ये जो वमर जो हो रहा था उसमें जो चक्कर चल रहा था वो सारा शांत हो जाएगा, विज्ञान घन थयो थको आ आत्मा आश्रवोती निवर्ते छे, भावार्थ शुद्धन, ये बात समझ में आई ना, कल जरा हमने आधी छोड़ी थी क्योंकि कंफ्यूजन था ये, लेकिन आज उसका हम बराबर सॉल्यूशन निकल गया अभी अपना, शुद्ध नहीं थी ज्ञानी ये आत्मानो एवो निश्चय करियो के हूँ एक छू शुद्ध छू परद्रव्य पति ममता रहित छू ज्ञान दर्शन थी पूर्ण छू, जारे ते ज्ञानी आत्मा आवा पोताना स्वरूप में रहतो थको तेनाज अनुभव रूप थाय त्यारे क्रोधाधिक आश्रवो क्षय पामे छे। इसको ही कहा कि उसने वमन किया, मतलब वो आश्रवों का। जेम समुद्र ना वमळे घना काल थी वाहन ने पकड़ी राख्यू होय पण पछी जारे वमळ शमे त्यारे ते वाहन ने छोड़ी दे छे, यानी यहाँ आश्रो को छोड़ दिया। तो आश्रो को छोड़ दिया कहना है, क्या किया उसने, अपने स्वरूप का अनुभव किया तो आश्रो छूट गए। तेम आत्मा विकल्पों ना वमण ने, देखो वमण को विकल्प कहा ना, आत्मा विकल्पों ना वमण ने क्षमाओ तो थको आश्रवो ने एटले वाहन ने छोड़ी दे छे। मथाड़ू हवे पूछे छे के कई विधि थी, एटले कई रीति थी आ आत्मा आश्रवो थी निवर्ते छे। पुण्य पाप ना भाव छे ते आश्रव छे, मलिन छे, अचेतन छे, दुख छे, चैतन्य नी जात थी विरुद्ध कजात छे। ये सारा 72 में हमने देख लिया, गाथा नंबर 72 में ये तीनों बातें देखी थी। जेने स्वरूप समझवानी गरज थई छे ते शिष्य पूछे छे के प्रभो आ आत्मा पुण्य पाप ना भावो थी कई विधि थी निवर्ते छे। अंदर आश्रो थी निवर्तवानो पोकार थयो छे ते पूछे छे के आ अज्ञान एटले कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति थी निवृत्ति कई रीते थाय तेना उत्तर रूप हवे गाथा कहे छे। टीका उपरनु प्रवचन। हूँ आ आश्रो ने क्षय पमाडू छू। आहा शैली तो जुओ, आम करे तो आम थाय एम नथी लीधू, हूँ क्षय पमाडू छू एम वात लीधी छे। यानी यहाँ पर भी स्वतंत्रता का ही यहाँ डंका पीटा हुआ है, डंडोरा पीटा हुआ है। कोई दूसरे के कारण या ऐसी मैंने कोई क्रिया की या इस तरह के परिणाम की ऐसी बात ही नहीं है कि यहाँ कोई शुभ अशुभ परिणाम करने से कोई बात होने वाली नहीं है। ये तो कहते हैं कि मैं स्वयं अपना स्वरूप में एकाग्र हो जाऊंगा तो सारी बात सीधी होने वाली है कि क्षय पमाड़ू छू कीधू शू कीधू हूँ क्षय पमाड़ू छू एम बात लीधी छे। गजब शैली छे, शू कहे छे हूँ आ आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप। एटले जेनी विद्यमानता हमेशा ध्रुव 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 पने रहे छे ए नित्य उद्योत रूप उदय रूप। कल कल आया था उद्योत रूप आया था ना, के उदय रूप ही था वही है। विज्ञान घन स्वभाव भाव पना ने लीधे। हाँ जी विज्ञान घन स्वभाव भावपना ने लीधे, यानी मेरा स्वभाव कैसा है, विज्ञान घन है, ज्ञान परिपूर्ण है। ज्ञान भी कैसा है कि जो ज्ञान में अन्य किसी का प्रवेश न हो, ऐसा घन स्वरूप है वह। इसलिए एना कारणे हूँ एक छू अहम एक को कहू छे ने एनी आ व्याख्या करी। हूँ शब्द थी पोतानी अस्थि सिद्ध करी छे अने आ थी प्रत्यक्ष अस्थि दर्शावी छे। छे ने के हूँ आ आत्मा प्रत्यक्ष चिन्ह मात्र ज्योति छू। प्रत्यक्ष थई शके ए वात नथी, प्रत्यक्ष छेज। यानि क्या कहा, यहाँ पर्याय की बात नहीं की है, यहाँ तो जो द्रव्य है छे इन्हीं बात करी है। क्या लिखा देखो देखो, प्रत्यक्ष थई शके ये शकवानी बात क्या हो पर्याय में हो ना? प्रत्यक्ष थई शके ए वात नथी पन प्रत्यक्ष छेज, यानि मेरी अस्थि जो है वो त्रिकाल है। तो वहां उन्होंने दो शब्द अच्छे वापरे ने के हूं अने आ, यानी अपनी स्वयं की अस्थि सिद्ध की है। भगवान आत्मा प्रत्यक्ष छे शक्तिनादि कारमा पारमी स्वयं प्रकाशमान विशद एवा स्वसंवेदनमय स्वानुभवमय प्रकाश शक्ति कही छे। ये क्या कह रहे हैं, ये जो 47 शक्ति है वो शक्ति का जो कोई प्रकरण है तो उसको शक्ति अधिकार कहा, तो उसमें 12 नंबर की जो है, हाँ 12वें नंबर की प्रकाश, 11 नंबर की स्वच्छत्व, 11 नंबर की सर्वज्ञत्व, 10 नंबर की सर्वदर्शित्व, ऐसा नीचे नीचे आना। क्यों, मैंने क्या कहा, 11 नहीं, 9 नंबर, हाँ 8 नंबर की विभुत्व प्रभुत्व विभुत्व, फिर 6 नंबर की सुख वीर्य, ऐसा नीचे आना। हाँ चलो ठीक है, जो भी है आगे पीछे एक आध समझ लेना कि जीवत्व चिति दृषि ज्ञान ज्ञान सुख वीर्य इस तरह लेना। हाँ चलो, तो यहाँ क्या समझा रहे हैं, तो यहाँ जो बार शक्ति ना अधिकार छे तेमा बारमा बारमी जो शक्ति छे ते प्रकाश शक्ति छे, उस प्रकाश शक्ति का डेफिनेशन क्या दिया है, उसका अर्थ क्या दिया है कि स्वयं प्रकाशमान विशद एवा स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। ये प्रकाश शक्ति के क्या हो रहा है कि स्वयं प्रकाशमान होना यानी स्वयं अनुभव में आना, ऐसी उसमें शक्ति है, ख्याल में है। तो हमको अपने को जानने के लिए अन्य की तरफ जाने की गरज ही नहीं है, ऐसा समझा रहे, इसलिए कहते स्वयं प्रकाशमान विशद एवा स्वसंवेदनमयी एटले स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति कही छे वस्तु। उसका ये अर्थ अभी स्वामी जी अपनी भाषा में बता रहे, पोते पोताती प्रत्यक्ष छाय एवा प्रकाश गुण सहित छे, आत्मानो एवो प्रकाश स्वभाव छे के पोतेज पोताना स्वसंवेदन मा प्रत्यक्ष प्रकाशमान थाय छे, यानी वो प्रकाशत्व शक्ति जो है, वो प्रकाश शक्ति जो है, वो शक्ति क्या कहती है कि स्वयं अपने अनुभव में आवे, ऐसी वो शक्ति है। आत्मा अपने को स्वयं में ज्ञान में आवे, अनुभव में आवे, स्वसंवेदन में आवे। वड़ी अभी ये तो हो गए पहली बात, अहम एक अखंड एम कहूं छे, आहा एक समय नी पर्याय नो भेद बन आत्मा मां क्या छे, तो ये त्रिकाली आत्मा की बात है ओ, पर्याय तो व्यवहार नहीं नो विषय छे। 16मी गाथा मां एम कहूं के दर्शन ज्ञान चारित्रपणे आत्मा परिणमे छे, ए मेचकपनु छे, मेचकपनु यानी अनेकपनु, यहां कहते मलिनता छे, मेचकपना यानी मलिनता नहीं हो, अनेकपना। एक ने त्रणपणे परिणम तो केवो, ए मेचक छे, भेद पड़े ते मेचक छे, व्यवहार छे, असत्यार्थ छे, वस्तु शुद्ध एकाकार छे, ते निश्चय छे। एकाकार कहो अखंड कहो एक ही बात है। वड़ी हूँ अनंत चिन्मात्र ज्योति छू, स्वभावनी शक्ति नु स्वरूप ज अनंत छे। अखंड अने अनंत ए त्रिकाली चिन्मात्र ज्योति ना विशेषण छे। आ भावनी वात करी, हवे कालनी वात करे छे। हूँ अनादि अनंत कहता त्रिकाल आदि अंत रहित छू, जे छे एनी आदि शू, यानी जे छे यानी ये पर्याय की बात नहीं कर रहे, ये त्रिकाली जो द्रव्य है ऐसे अनादि अनंत कौन कौन है, हाँ 6 द्रव्य है, ख्याल में है ना, तो क्या कह रहे यहाँ के जे छे एनी आदि शू, एटले आदि होती नहीं, जे छे एनो अंत शू, तो ये जिसको आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ये किस कारण से हम समझ सकते हैं, दो कारण तो कम से कम मालूम होना चाहिए ना। आप बताएंगे? अस्तित्व गुण और दूसरा कारण उत्पाद वे ध्रुव तो है ना भाई, सत्ता स्वरूप है ना, क्या कह रहे? देखो देखो देखो, जे छे एनी आदि शू, जे छे एनो अंत शू, वस्तु तो वस्तु एने यहां द्रव्य हो भाई, अनादि अनंत नित्य उदय रूप छे, नित्य उदय रूप यानी उसकी विद्यमानता नित्य है, वस्तु नित्य प्रकट रूप छे, सूर्य तो सवारे उगे ने सांजे नमी जाए, परंतु आ चैतन्य सूर्य तो नित्य उदय रूप ज छे। आहा वर्तमान मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप चिन्मात्र ज्योति छू एम कहे छे। जेम अग्नि नी ज्योति छे तेम आ आत्मा चिन्मात्र ज्योति छे, तेने आश्रय लेता संसार बड़ी ने खाक थई जाय छे। ज्योति है ना, वो ज्योति तो उसके साथ में गए तो संसार का नाश हो जाएगा कहते हैं। आटला विशेषणों कहीं ना हवे कहे छे के विज्ञान घन स्वभाव भाव बनाने लीधे हूँ एक छू। विज्ञान घन स्वभाव एटले विकल्प तो शू जेमा एक समय नी पर्याय ना पन प्रवेश नो अवकाश नथी। पर्याय तेनी ऊपर ऊपर तरे छे पन अंदर प्रतिष्ठा पामती नथी, प्रतिष्ठा पामती नथी एटले प्रवेश करी सकती नथी। आ वात अगाउ कलशमा आवी गई छे। बधा आत्मा भेगा थईने हूँ एक छू एम नथी, आ तो एकलू विज्ञान नू धड़ जेमा परनो के पर्याय नो प्रवेश नथी, एवो चिन्मात्र ज्योति, एवा चिन्मात्र ज्योति छू। ये बात है बराबर है के एवो चाहिए? आपने क्या लिखा है? एवो चाहिए ना, हमारे में एवा है। क्या कह रहे? देखो देखो, यहां दो तीन बातें हैं कि ये आत्मा जो है उसमें जो पर्याय है ये ऊपर ऊपर तरे छे, यानी ऐसा मत समझना कि द्रव्य नीचे रहता है और पर्याय ऊपर रहती है। इनका ये कहना है कि जो स्वभाव है उस स्वभाव में पर्याय कभी प्रवेश नहीं करती है, बस इतना ही समझना है। वास्तव में पर्याय और द्रव्य दोनों का क्षेत्र एक ही है या जुदा जुदा है? हाँ नलिन भाई, प्रदेश ने क्षेत्र की पूछ रहा हूं मैं बात। हाँ एक ही है, घबराते क्यों? अरे हाँ, लेकिन वो अपेक्षा ये है कि पर्याय हमेशा जुदी रहती है, द्रव्य में एक में एक नहीं होती है, पर्याय में भी प्रवेश नहीं करती, अपने द्रव्य में पर्याय प्रवेश ही नहीं करती है। तो विकार तो छोड़ो, कहते पर्याय भी नहीं, पर्याय ने कौन सी अभी यहां लेना कि वो विकारी पर्याय की तो बात छोड़ो, अविकारी पर्याय भी नहीं, यानी जिस पर्याय में आत्मा का अनुभव हो रहा है वह पर्याय भी उस द्रव्य से जुदी है। इसलिए क्या कहते हैं पर्याय ऊपर ऊपर तरे छे। देखो देखो किधर गया वो, वस्तु नित्य चैतन्य से। हाँ बरोबर, जेमा एक समय नी पर्याय ना पन प्रवेश नो अवकाश नथी, ये त्रिकाल स्वभाव की बात है ना। अब आगे कहते हैं पर्याय तेनी ऊपर ऊपर तरे छे पन अंदर प्रतिष्ठा पामती नथी, प्रतिष्ठा पामती नथी एटले यार प्रवेश करी शकती नथी। आ वात आगाउ कलशमा आवी गई छे। अभी और एक नई बात बताते हैं कि बधा आत्मा भेगा थईने हूँ एक छु एम नथी, यानी आई ऐसे कई लोगों की मान्यता क्या के हाँ, ये महा, हम तो उस भगवान के अंश हैं, वो महाज्योत है, और ये जो हमारी आत्मज्योत है उसमें विलीन हो जाए तो हमें मोक्ष होगा, और वो सब आत्मा मिलकर एक आत्मा है, ऐसा तो एम नथी ऐसा समझा रहे स्वामी जी। बहुत आसान शब्दों में बोलते हैं, मतलब हमारे जैसे कड़क नहीं। तो बधा आत्मा भेगा थई ने हूँ एक छु एम नथी, आ तो एकलू विज्ञान नु दड़, दड़ याने एक पूरा मतलब पिंड जिसको हम कहेंगे। तो कैसा है विज्ञान याने विशेष ज्ञान जो है, तो एमा परनो के पर्याय नो प्रवेश नथी। ए वो चिन्मात्र ज्योति हूँ विज्ञान घन स्वभाव भाव पनाने लीधे एक छू, आत्मानु क्षेत्र भले असंख्यात प्रदेशी शरीर प्रमाण होए, परंतु तेना स्वभावनु सामर्थ्य अनंत अपार बेहद छे। वो देखो देखो, अभी यह तो आत्मा के कितने प्रदेश है, तो कहते असंख्यात प्रदेश है, तो ये परमाणु जो है उसका परमाणु के प्रदेश कितने हैं बेन, मालूम है परमाणु के प्रदेश? परमाणु काल नहीं, परमाणु। हाँ अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं, एक प्रदेश ही है, और उसका स्वभाव कैसा है, बेहद है, हाँ? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा है वो। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव तो अपरिमित ही होगा, यानी उसको लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड होगा, अनंत होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ क्या समझा रहे, देखो यहाँ तो मैंने समझने के लिए परमाणु की आपको परमाणु का उदाहरण दिया, यहाँ तो कहते आत्मानु क्षेत्र केवू छे, असंख्यात प्रदेशी छे, परंतु उसका स्वभाव कैसा है, वो स्वभाव का सामर्थ्य अनंत है। यानी हम देखते हैं ना, देखो आत्मा में ज्ञान नाम का जो गुण है, उस ज्ञान के एक समय की पर्याय में पूरा लोकालोक तीन काल की पर्याय सब जानने में आ जाए, सब द्रव्य उनके गुण उनकी पर्याय वगैरह 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 ये सब जानने में आवे, और ऐसा एक लोक है, ऐसे अनेक लोक होते फिर भी जाने, ऐसे उस केवल ज्ञान की क्षमता है। तो कैसा है, बेहद है, हद नहीं उसको, लिमिट नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सामर्थ्य केवू छे, तो सामर्थ्य तो अनंत छे, बेहद अपार, क्षेत्रनी कीमत नथी, यानी क्षेत्र कितना छोटा बड़ा है उसकी कोई मायना नहीं है। एक प्रदेशी भी हो गया तो उसका भी स्वभाव कैसा है, बेहद है। अभी इसके लिए हम देखते हैं, देखो ये जो क्या नाम है आकाश द्रव्य जो है वह कितना प्रदेशी है। हाँ भाई साहब, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, तो आकाश द्रव्य जो अनंत प्रदेशी है उसके एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु भी समा जा सके, उनको अवगाना देवे, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। अब बहुत डिटेल में कहना तो बहुत सारी बातें हैं, ये एक एक सिंगल परमाणु जो है ना, ऐसे अनंत परमाणु आके उस आकाश के एक प्रदेश में स्थित हो जाए तो भी उनको अवगाना मिलेगी। अब द्वियनुक जो होते हैं ऐसे स्कंद है, यानी दो परमाणु लेकिन एक प्रदेशी, ऐसे भी अनंत आ जाए फिर भी उसको अवगाना देंगे। ऐसे तीन अनुक चार अनुक ऐसे संख्यात असंख्यात, अरे अनंत परमाणु एक प्रदेशी जो होंगे एक प्रदेश में, ऐसे भी आवे तो उनको भी अवगाना देने की सामर्थ्य एक आकाश के प्रदेश में है। तो यहाँ क्या समझा दें कि जो क्षेत्र है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, यहाँ ये बता रहे हैं क्षेत्रनी कीमत न थी, तो ये तो मैंने उदाहरण के लिए अपने को आकाश के एक प्रदेश की बात की, यहाँ तो किसका वर्णन गाया जा रहा है, आत्मा का। तो कहते हैं कि आत्मा भले असंख्यात प्रदेश है लेकिन उसके स्वभाव का सामर्थ्य तो भरपूर है, अमाप है, अपार है। क्षेत्रनी कीमत न थी, स्वभावना सामर्थ्य की कीमत छे। साकरना गांगड़ा करता सेकेरिन्नु, सेकेरिन्नी एटले सेकरिन्नी, કણીનું ક્ષેત્ર ખૂબ નાનું છે પણ શ્રીકૃષ્ણની મીઠાશ અનેક ગણી છે. એમ ભગવાન આત્મા શરીર પ્રમાણ થોડા ક્ષેત્રમાં રહેવા છતાં એનું વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ રૂપ સામર્થ્ય અનંત છે. ભાઈ, જ્યાં જેટલામાં તે છે ત્યાં ધ્યાન લગાવવાથી તે પ્રકટ થાય છે. હા, ક્યાં કહા, દેખો દેખો, હમ આત્મા કો ઢૂંઢને કો કહી અન્ય ઇધર ઉધર જાતે તો કહે કે નહીં, જાણે કી ગરજ નહીં. જ્યાં જેટલામાં છે, તો કેટલામાં છે, તો શરીર પ્રમાણ છે, ખ્યાલ મેં, તે ત્યાં ધ્યાન લગાવવાથી તે પ્રકટ થાય છે. આત્મા આશ્રવથી કેવી રીતે નિવર્તે છે એમ શિષ્યનો પ્રશ્ન છે, તેનો આ ઉત્તર ચાલે છે. આત્મા અખંડ અનંત પ્રત્યક્ષ ચિન્હ માત્ર જ્યોતિ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપનાને લીધે એક છે. તેની દ્રષ્ટિ કરતા મિથ્યાત્વનો આશ્રવ ટળી જાય છે. આ સૌ પ્રથમ ધર્મની શરૂઆતની વાત છે. અહીં એક ગોલ થયો. હવે હું શુદ્ધ છું એ બીજો બોલ કહે છે. કર્તા કર્મ કરણ સંપ્રદાન અપાદાન અને અધિકરણ સ્વરૂપ સર્વકારકોના સમૂહની પ્રક્રિયાથી પાર ઉતરેલી જે નિર્મળ અનુભૂતિ, તે અનુભૂતિ માત્ર પનાને લીધે શુદ્ધ છું. ક્યાં કહે રે, દેખો, આત્મા પરનો કર્તા અને પરેનું કાર્ય એવું એનામાં છે જ નહીં. આત્મા સિવાય શરીર મન વચન ઇન્દ્રિય કુટુંબ કે દેશ ઇત્યાદિ પરદ્રવ્યનો હું કરતા અને એમાં જે ક્રિયા થઈ તે મારું કર્મ એવું છે જ નહીં. દેખો ક્યાં કહે રહે હૈ, યે જો પર 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 પદાર્થ કી પહેલી વાત લી હૈ, તો કહેતે પરનો કરતા, આત્મા પરનો કરતા અને પર એનું કાર્ય એવું એનામાં છે જ નહીં. તો યહાં તો પહેલે તો હમને રાગ કી બાત લી થી, લેકિન યહાં સ્વામીજી પર પદાર્થો કી ભી બાત લે રહે. યહાં પર દેખો, આત્મા સિવાય શરીર મન વચન ઇન્દ્રિય એ સારી શરીર કે ભાગ હૈ, કુટુંબ કે દેશ ઇત્યાદિ પરદ્રવ્યનો હું કરતા અને એમાં જે ક્રિયા થઈ તે મારું કર્મ એવું છે જ નહીં. એને યહાં તો સારી પરદ્રવ્યો કી હિ બાત ઉઠાઈ હૈ. આ વાત અહીં લીધી નથી, કેમ કે જે પરદ્રવ્ય છે તે કાર્ય વિના કદી કોઈ કાળે ખાલી નથી. આ એક વાત. ક્યાં કહા, યહાં યે સમજા રહે હૈ, જો પરદ્રવ્ય હૈ વો કબ સે હૈ ભાઈ, હા, આનંદ કાળ સે હૈ, તો વો ગુણો કે સાથ હૈ યા ગુણો સે રહિત હૈ, તો ગુણ હોંગે તો ઉનકી પર્યાય ભી હોગી કે નહીં, તો પર્યાય કબ સે હો રહી હૈ, તો વો ભી અનાદિ કાળ સે હો રહી હૈ. આપ અનંત બોલ રહે થે, અનાદિ, હા, અનાદિ બોલ રહે, તો ક્યો આજ ખાના નહીં ખા કે ક્યા, ચલો, તો ક્યાં કહે રહે, દેખો, યહાં કહે રહે કે પરદ્રવ્ય છે તે કાર્ય વિના, યાને એની પર્યાય નહીં થાય એમ કોઈ દી બને નહીં, એમ કે તે કાર્ય વિના કદી કોઈ કળે ખાલી નથી. ઇસકાય અર્થ હર સમય પ્રત્યેક દ્રવ્ય કા પરિણમન યાને પર્યાય હો રહી હૈ. આ એક વાત. હવે બીજી વાત, દયાદાન, એ તો અભી હમને અત્યંત ભિન્ન પર પદાર્થ કી વાત થી. અભી કહેતે દયાદાન વ્રત તપ ભક્તિ પૂજાના અશુદ્ધ ભાવ થાય તેનો હું કરતા અશુદ્ધ કહા હો, પણ હૈ કોણ છે વો શુભમાં, તો અશુદ્ધ ભાવ થાય તેનો હું કરતા અને તે મારું કર્મ, હું સાધન, હું સંપ્રદાન મારામાંથી થયું અને મારા આધારે થયું, આવા રાગની ક્રિયાના ષટકારકની પ્રક્રિયા તે આત્માના સ્વરૂપમાં નથી. એ વિભાવ ભાવ હે ને, એટલે કહે રે. ત્રીજી વાત, અભી કિતની ઉસ પર સે ઉસકો ઘટિત કરેંગે. એક સમયની નિર્મ પર્યાયના ષટકારકો જેમ કે નિર્મળ પર્યાયનો કરતા હું, નિર્મળ પર્યાય તે મારું કર્મ, તેનું સાધન હું, મારા માટે તે થઈ, મારાથી થઈ, મારા આધારે થઈ, આમ નિર્મળ પર્યાયના ષટકારકોની જે પ્રક્રિયા, તેનાથી પાર ઉતરેલી એટલે ભિન્ન જે નિર્મળ અનુભૂતિ, તે ત્રિકાળી અનુભૂતિ માત્રપનાને લીધે હું શુદ્ધ છું. અહીં અનુભૂતિ એ પર્યાયની વાત નથી, પણ ત્રિકાળી દ્રવ્યની વાત છે. એ વાત કાલે આવી હતી. પર્યાયમાં ષટકારકનું પરિણમન સ્વતંત્ર છે, એનાથી મારી ચીજ ત્રિકાળી ભિન્ન છે. વર્તમાન નિર્મળ પરિણતથી મારો ત્રિકાળી અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા ભિન્ન છે, એને અહીં શુદ્ધ કયો છે, કહ્યો છે. ક્યા કહે રહે હૈ? યે જો વર્તમાન મેં જો નિર્મળ પરિણતિ હો રહી હૈ, ઉસસે ભી પાર એસા જો ત્રિકાલી આત્મા હૈ, વો કૈસા હૈ? અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા હૈ, યાને વો ત્રિકાલી દ્રવ્ય કે સ્વભાવ કી બાત કહે રહે હૈ. તો વો ઇન સારી બાતોન સે, વિકાર યા અવિકારી પરિણામોન સે, વહ ભિન્ન હૈ, ઇસલિયે વો ઉસકો કહે રહે મેં શુદ્ધ હું. હા, આપકા કોઈ પ્રશ્ન હૈ ભાઈ? એ કારક જો હોતે હૈ વહ ગુણ હૈ. કારક જો ગુણ હૈ તો ઉનકી પર્યાય ભી હર હમેશા હોગી.
પણ યહાં કારકો કી પ્રક્રિયા કહા ના, ઇસલિયે યહાં પર્યાય કી બાત હૈ. યાને યહાં જો અનુભૂતિ સ્વરૂપ કહા હૈ વો ત્રિકાલી અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા. ये अनुभूति यानी कल जो बात मैंने पूछी थी ना, ये शुद्धोपयोग क्या क्या है, तो ये पर्याय की बात नहीं है. पर्याय में षटकारक लगते, षटकारक की प्रक्रिया है ये, तो पर्याय में पर्याय ऊपर लगाते ना, अब उससे पार तो ये जो त्रिकाली द्रव्य उसकी यहाँ बात है, उसको यहाँ अनुभूति स्वरूप कहा है.
देखो
मैं शुद्ध क्यों हूं उसकी बात है, ये पर्याय की शुद्धता की बात नहीं हो रही है. અનુભૂતિ માત્ર એને, એ ત્રિકાલી અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, એ અનુભૂતિ માત્ર પના, એ યહી બાત. યે દેખો પહેલે, હા એને યહાં તો યે બાત કહેના ચાહતે કે રાગ કે ષટકારો કી તો બાત હી છોડ દો, યહાં તો શુદ્ધ પર્યાય વાલે જો ષટકારક હૈ ઉસ પ્રક્રિયા સે ભી પાર એસી જો અનુભૂતિ સ્વરૂપ મેં હું સ્વયં, ઇસલિયે મેં શુદ્ધ હું. શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટી ઇસલિયે શુદ્ધ હું, યે બાત નહીં કહી. મેં તો ત્રિકાલ શુદ્ધ હું, એ વાત ચાલ રહી.
અભી જો આપકા પ્રશ્ન થા ના, એ કારક ગુણ હૈ ઓર ગુણ હૈ તો ઉસકી હર હમેશા પર્યાય હોગી ના, તો આપ જિસ તરહ સે ઉસકો દેખેંગે, યહાં તો અભી આપકો પતા હૈ કે પર્યાય મેં યે સારે લગાયે હૈ, યહાં તો પર્યાય કી વાત હૈ, લેકિન ગુણ હૈ જબી તો પર્યાય હોગી, ખ્યાલ મેં હૈ ના? તો આપ ખાલી ગુણ કોઈ પકડ કે રખેંગે ઓર વો પર્યાય કો પકડ કે રખેંગે તો દોનો હી ગલત હૈ. હા બિલકુલ, કે ગુણ હૈ તો પર્યાય હૈ, પણ યહાં વાત તો પર્યાય કી ચલ રહી હૈ, લેકિન યે જો અનુભૂતિ સ્વરૂપ આત્મા કી જો વાત હૈ વો કૈસા હૈ, કે ત્રિકાલ અનુભૂતિ સ્વરૂપ હી હૈ ઓર વો જો ત્રિકાલી જો હૈ ઉસકી વાત યહાં પર, ઇસલિયે ઇન દોનો પ્રક્રિયાઓ સે પાર. એક તો યે અશુદ્ધ વિભાવ રૂપ પરિણમન હો રહા થા वो प्रक्रिया है, और जो स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है ना, वो पर्याय में हो रहा है, वो भी इसमें है नहीं, लेकिन वो कैसा है तो अनुभूति स्वरूप है, और इसीलिए उसको यहां शुद्ध कहने में आया है. देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ेंगे, अपने कोई जल्दी नहीं है. देखो बीजी बात थी लू चू, ये पहली बात में तो ये पर पदार्थों का मैं करता नहीं हूं ये बात आई थी. अब यहां जो विकारी परिणमन हो रहा है उसकी बात ले रहे, कि कहे दयादान व्रत दप भक्ति पूजा ये अशुद्ध भाव जो है तेनो हूं करता ने ते मारू कर्म. तो यहां कर्ता और कर्म की उन्होंने बात गलत मतलब मानी, तो जो विभाव चालू हो गया वहां, हा? उसकी जो ये सब जो ये मारामती थी वगैरह नाश थी, ये तो अगर आपको समझना है तो प्रश्न पूछेंगे हम तो कौन, तो वहां उसका उत्तर मिलेगा कर्ता। क्या किया तो ये कर्म जो हुआ वह क्रिया हुई। अब किससे हुई तो साधन से हुई। और संप्रदान का अर्थ है कि किसके लिए, अभी गुजराती में क्या बोला आपने, हाँ किसके लिए, कोना माटे, अभी किसमें से ये अपादान बताएगा और किसके आधार से वह आधार अधिकरण बताएगा। तो ये सारी जो बातें हैं कि कर्ता अने ते मारु कर्म, हूँ साधन हूँ संप्रदान, मारा मती थयो अने मारा आधारे थयो, आवा रागनी क्रियाना षटकारकनी जे प्रक्रिया छे ते आत्माना स्वरूपमा नथी। तो ये बात किसकी चल रही, आत्मा के स्वरूप की चल रही। उसी तरह यहाँ जो एक समय निर्मल पर्याय, अभी यहाँ सम्यक दर्शन रूपी निर्मल पर्याय हुई, सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल पर्याय हुई, कोई भी लेना एक, तो जेम के निर्मल पर्याय नो करता हूँ, निर्मल पर्याय ते मारु कर्म तेनु साधन हूँ, मारा माटे ते थई छे, मारा ते थई छे अने मारा आधारे थई छे, ये षटकारक। आम निर्मल पर्याय ना षटकारकोनी जे प्रक्रिया छे तेनाथी पार उतरेली, पार उतरेली को भूल जाओ, तेनाथी भिन्न जे निर्मल अनुभूति ते त्रिकाली अनुभूति मात्र पनाने लीधे, तो ये इनसे भी इन प्रक्रियाओं से अलग जुदा ऐसा जो मेरा त्रिकाली अपरिणामी स्वभाव है, लेकिन वो कैसा है, अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति मात्र पनाने लीधे हूँ शुद्ध छू। अभी यहाँ क्लियर दिया है कि आए अनुभूति ए पर्यायनी वात नथी, पण त्रिकाली द्रव्यनी वात छे, पर्याय मा षटकारक नु परिणमन स्वतंत्र छे, एना थी मारी चीज एटले हूँ पोते त्रिकाली भिन्न छू। आहा हा, वर्तमान त्रिकाल परिणति थी मारो त्रिकाली, हाँ जी मैंने त्रिकाल पढ़ा क्या, वर्तमान निर्मल परिणति थी मारो त्रिकाली अनुभूति स्वरूप भगवान भिन्न छे, मारो भगवान भिन्न छे, ऐसा लो त्रिकाली भगवान भिन्न छे, तो वो कैसा है, अनुभूति स्वरूप, एने अहीं शुद्ध कयो छे। निर्मल अनुभूति, ये अभी ख्याल में आ गया मिली भाई, निर्बल अनुभूति पर्यायना भेद ने लक्ष्य में लेवो ए व्यवहार नहीं छे, अशुद्धता छे, मेचकपणु छे, मलिनता छे। आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रणपणे परिणमे एम लक्ष्य में लेवु ए व्यवहार नहीं छे। ए प्रमाणे त्रणपणे आत्मा ने पोताने अनुभवता आश्रो थी निवृत्ति नहीं थाय, क्योंकि वहां राग भाव चल रहे ना। प्रवचन सारना नए अधिकार मा कहे छे के माटी ने एना वासण आदि पर्याय ना भेद थी जो भी ए अशुद्ध नहीं छे, तेम आ आत्मा ने तेना षटकारक ना पर्याय ना भेद थी जो वो ते अशुद्ध नहीं छे। ज्ञान नी पर्याय, अभी क्या हो गया, अभी हमारे नए नहीं हुए ना, थोड़े दिन में हो जाएंगे, अभी प्रवचन सार में हम पढ़ने जाएंगे, तो उसके बाद इसकी 47 शक्ति आएगी सब एक के बाद। तो यहाँ कहते ज्ञान नी पर्याय, आनंद नी पर्याय, वीर नी पर्याय, एम पर्याय ना भेद थी आत्मा जो वो ते अशुद्धपणु छे, एना थी मिथ्यात्वनो आश्रय नहीं मटे। आई तो कहे छे के षटकारक नी प्रक्रिया थी भिन्न वस्तु त्रिकाली अनुभूति स्वरूप जे भगवान आत्मा छे तेना ऊपर दृष्टि आपता मिथ्यात्वनो आश्रय टळी जाय छे। दयादान विकल्पति धर्म माने ए तो मिथ्यात्व छे ज, परंतु पोताने निर्मल पर्यायना भेद थी लक्ष्मा लेता जे विकल्प थाय एनाथी धर्म थाय एम माने ते पण मिथ्यात्व छे। ये धर्म मानने का मान्यता होवे तो है हो, भगवान आत्मा एक समय नी पर्याय ना षटकारक ना परिणमन थी पार उतरेली भिन्न अनुभूति मात्र त्रिकाली शुद्ध वस्तु छे, यहाँ बार बार ये बताया है कि वो त्रिकाली वस्तु की कैसी है, वह अनुभूति स्वरूप, अनुभूति मात्र ऐसी जो त्रिकाली वस्तु है, त्रिकाली वो शुद्ध वस्तु है। आ त्रिकाली शुद्ध न्याय ऊपर दृष्टि जता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रगटे छे अने त्यारे आत्मा आश्रो थी निवृत्त थाय छे। विकारना षटकारकनी परिणमन रूप क्रिया तो दूर रही, अहीं तो ज्ञाननो जे प्रकटन छे एना षटकारकनी प्रक्रिया परिणमन थी त्रिकाली अनुभूति स्वरूप आग भगवान भिन्न छे अने तेने अहीं शुद्ध कहेल छे। यानी ये जो स्वभाव है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की पर्याय है नहीं, ना विकारी ना अविकारी। तो वो विकारी परिणमन जो होने में जो कोई षटकारक है या जो अविकारी परिणमन होने में जो षटकारक है वो कोई त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। बस एवा त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य की दृष्टि थता मिथ्यात्व नो आसरो टळी जाय छे। आ विधि थी जीव आश्रवो थी निवर्ते छे। जेम शीरो बनावो होय तो एनी विधि ए छे, स्वामी जी वो भी जानते थे के प्रथम आटो घी मां सेके अने पछी एमां गोल नू पानी नाखे तो शीरो तैयार थाय, तेम आत्मा मां धर्म केम थाय ते समझावे छे। एक समय मां कारकना भेदो थी पार अभेद शुद्ध चैतन्यमय त्रिकाल वस्तु छे, तेना ऊपर दृष्टि आपता सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट थाय छे अने मिथ्यात्मनो आश्रय छूटी जाय छे। आगळ आवशे के जेम जेम द्रव्यनो आश्रय वधशे तेम तेम आश्रव मटी जशे। आ एनी रीत अने पद्धति छे। बीजी रीते करवा जईश तो मरी जईश तो पण वस्तु प्राप्त नहीं थाय। पूर्ण आनंद नो नाथ अभेद एक चैतन्य में भगवान छे, एनु त्रिकाल टकतु जीवन ते एनु सत्व तत्व छे। यानी वो जो कायम टिकने वाला है वही उसका स्वभाव है, वही उसकी सत्ता है। एनो स्वीकार छोड़ी ने निमित्त राग ने भेद में अटकीश तो मिथ्यात्वादी नो अस्रोत से। तो ये मिथ्यात्व आदि में किसको लेंगे हम? हाँ बोलो। आश्रव आश्रव हाँ हाँ कोई बात नहीं। ये आदि लिया ना इधर, तो ये आदि में अनेक बातें ली आजकल की, परंतु वितरकता रूप धर्म नहीं था। यानी मिथ्यात्वादी आश्रव होंगे उसके कारण से भेद में अटकेंगे, फिर सिर्फ भेद में अटके नहीं, स्वीकार किसका छोड़ा है? अपने स्वभाव का। एनो स्वीकार छोड़ी ने भगवान आत्मा का स्वीकार छोड़कर निमित्त राग और भेद में हम अटकेंगे तो मिथ्यात्वादी आश्रव हो जाएंगे। परंतु वितरकता रूप धर्म नहीं थाय, आवो वितराग नो मार्ग जेम छे तेम समझवो जोइए। एक स्तुतिकारे कहूं छे के प्रभु तुम जानग रीति सहु जग देखता हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध सहु ने पेखता हो लाल। क्या कहते हैं? हे नाथ, आप ज्ञान मा त्रण का त्रण लोक जुओ छो, तेमा आप बधा आत्माओ निज सत्ताए परिपूर्ण शुद्ध भगवान छे एम जोई रहा छो। आ वात अहीं लीधी छे पर्यायना षटकारकनी परिणति थी भिन्न आखू चैतन्यनू दळ भगवान आत्मा शुद्ध छे। एने विषय करनारी दृष्टि पण एमां समाती नथी। एने क्या कर लिखा है? विषय करनारी दृष्टि, यानी वो सम्यक दर्शन जो हो रहा है, आत्मानुभूति जो हो रही है, वह सम्यक पर्याय भी उसमें समाती नहीं है, उससे जुदी रहती है। ये ऊपर जो बताया ना, प्रभु तुम जानग रीति सहु जग देखता हो लाल, यानी जिनेंद्र भगवान को कहते हैं कि तुम्हारी जानने की रीत कैसी है, तो तुम सारे जग को देखते हो और फिर भी निज सत्ताए शुद्ध हो। कब के सहु ने पेकता हो लाल, यानी सबको देखते हैं जानते हैं लेकिन उनसे जुदा स्वयं को आपने टिकाए रखा है, ये तुम्हारी जानने की रीति कोई अलग है, तुम किसी से अटके हुए नहीं है। हाँ बताइए। हाँ त्रण का त्रण ने जो तेमा आप बधा आत्माओ निज सत्ताए परिपूर्ण शुद्ध छे एम जोई रहा छे। हाँ आ बात आई लीधी, परंतु निज सत्ता
उन्होंने जो बताया ना एने विषय करना ही दृष्टि पण एमा समाती नथी, उसकी बात चल रही थी। आत्मा को शुद्ध रूप से देखने वाली पर्याय वो निर्मल पर्याय है, वो भी उसमें नहीं है, ये बात बता रहे।
आप जो कह रहे हैं वो भी बराबर है कि सभी को आप भगवान स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन ऐसी देखने वाली जो दृष्टि है वह भी उस त्रिकाली स्वभाव में इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग है, जुदी है। ऐसा परिणतिथि भिन्न आखु चैतन्य दृढ़ भगवान आत्मा शुद्ध छे, तो यहाँ ये षटकारकनी परिणतिथि भिन्न ये बात बताई। अब आगे कहते हैं एने विषय करनारी दृष्टि पण एमां समाती नथी, एवो ए त्रिकाल एक शुद्ध छे एम भगवान ने जोयो छे। यानी यहाँ वो भी बात आई कि उसमें कोई अन्य बात उसमें मिक्स नहीं हुई है, अपनी पर्याय भी नहीं हुई है। जारे एक समय ने पर्याय नु लक्ष्य छोड़ी त्रिकाणी एक शुद्ध अनुभूति स्वरूप चैतन्य भगवान ना लक्ष्य परिणमन करे छे, त्यारे मिथ्यात्व नो नाश थई सम्यक दर्शन ने वितरागी परिणति नो उत्पाद थाय छे। आवी अंतरनी क्रिया समझाय नहीं, एटले कोई दया पाड़ो, व्रत करो, पूजा प्रभावना करो, एम बारनी क्रियाओं मां धर्म बतावे छे, एटले राजी राजी थई जाय छे। परंतु भाई ए तो बधी रागनी क्रियाओ छे, राग छे ए तो अचेतन आंधळो छे, एमां ज्ञाननु एटले चैतन्यनु किरण नथी, यानी ना वो स्वयं को जानता है ना पर को जानता है, इसलिए उसको अंधा बना दिया, अंधा का, और नहीं जानता इसलिए उसको अचेतन भी कहा। जेम सूरज नु किरण सफेद उज्ज्वल होय पन कोळसा जेवू काळू न होय, तेम चैतन्य सूर नु पर्याय रूप किरण चैतन्यमय आनंदमय होय पन आंधळू रागमय न होय। आत्मा छ कारकों समूह की प्रक्रिया थी पार जे निर्मल अनुभूति स्वरूप त्रिकाणी शुद्ध चैतन्य भगवान छे ते भूतार्थ छे, ये बात साची छे, विद्यमान छे, तेना ऊपर दृष्टि देता सम्यक मिथ्या दर्शन नो व्यय अने सम्यक दर्शन नो उत्पाद थाय छे। पर्याय ना भेद ने लक्ष्य में लेवो ते अशुद्धता छे। क्या कहा? भेद में अपना लक्ष्य जाता है तो हम अशुद्धता में प्रवेश कर रहे हैं। एक समय नी जे निर्मल पर्याय प्रकट थाय तेनाथी भिन्न संयोग थी भिन्न अने दयादान ना विकल्प थी भिन्न पण भिन्न अनुभूति स्वरूप त्रिकाणी शुद्ध द्रव्य छे, तेनो आश्रय करवाथी धर्मनी शुरुआत थाय छे, आ धर्म पामवानी विधि छे। यानी आ किसी भी प्रकार के भेद त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, इस बात को यहाँ विशेष रूप से समझा रहे। तो ये थोड़ा बहुत तो नियमसार के विषय को टच करता है। केवड़ी ना केड़ा है तो भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देव अने श्री अमृतचंद्राचार्य देव केवल ज्ञान केम थाय अने ते पहला सम्यक दर्शन केम थाय एनी रीत बतावे छे। कहे छे के पर्याय ना षटकारको ना भेद नी रुचि छोड़ी ने अखंड एक अनुभूति स्वरूप त्रिकाणी भगवान अंदर पड़ियो छे एनो आश्रय कर, त्यारे सम्यक दर्शन ने सम्यक मतिश्रुत ज्ञान थाय छे। क्या कहते हैं? यहां सम्यक ज्ञान होता है इतना नहीं बताया, सम्यक मति श्रुत ज्ञान दोनों को भी लिए। धवल में आवे छे के श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान ने बोलावे छे, अर्थात सम्यक मति श्रुत ज्ञान जेने प्रकट थयुं तेने अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट थशे ते निश्चित छे। केवल ज्ञान सर्वज्ञ पद साध्य छे, परंतु ध्येय तो त्रिकाणी शुद्ध द्रव्य छे। क्या कहना चाहते हैं? यहां कह रहे कि हमारा साध्य क्या है, तो भले ना केवल ज्ञान हो जाए लेकिन वो कैसा प्राप्त होगा? तो कहते ध्येय स्वरूप ऐसा जो त्रिकाली द्रव्य है उसी में एकाग्रता करने से केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होगा। यानी हम अपने स्वरूप में लीनता रखेंगे, अधिक अधिक दृढ़तर उसमें क्या कहते हैं अचलपने वहां रहेंगे, तो कहते हैं कि तुमको अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान क्या है? तो वो तो साध्य है। वो साध्य कैसा प्राप्त होगा? तो स्वरूप में एकता। क्या लिखा देखो, केवल ज्ञान एटले सर्वज्ञ पद साध्य छे, परंतु ध्येय तो त्रिकाणी शुद्ध द्रव्य छे।
यानी केवल ज्ञान वो ध्येय नहीं है, उसका ध्यान नहीं करना। ध्यान किसका करना है? तो ध्येय का, त्रिकाली का। और उसका ध्यान करने से पर्याय में वो साध्य रूप अवस्था प्राप्त हो जाएगी।
देखो बात ऐसी है, हमको बहुत बार यह भी उपदेश दिया गया है और हमने सुना भी बहुत बार है के पर्याय पर नजर रखने से धर्म नहीं होगा, या पर्याय में से पर्याय प्रकट नहीं होगी, ख्याल में? और पर्याय पर नजर रखेंगे तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। तो अभी केवल ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है? तो हमको मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। ये तो भाई प्राप्ति के लिए साध्य क्या है, यहां तक तो बहुत सही बात है, लेकिन वो प्राप्त करने की रीति कौन सी है? तो सम्यक दर्शन करने की जो रीत है ना, वही केवल ज्ञान प्राप्त करने की रीत है, वही मुक्त अवस्था यानी मोक्ष प्राप्त करने की रीत है। तो वो क्या है? तो ध्येय स्वरूप जो अपना स्वभाव है, उस ध्येय का ध्यान करने से पर्याय में ये केवल ज्ञान आदि पर्याय सहज रूप से प्रकट होगी। ख्याल में? तो हमारी जो कुछ भूल होती है हमेशा, तो ध्येय में भूल होती है। ध्येय में ध्यान न लगाते हुए हम अन्यत्र अपना उपयोग लगाते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता है। ये अभी गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, मराठी में शब्द बताऊंगा तो आप शायद समझ जाएंगे। धूपाट न बोलते, धूप रखने का एक ऐसा बर्तन आता है, ऐसा ऊपर ऐसा रहता है और नीचे भी ऐसा ही रहता है, मतलब डमरू के आकार का। तो उसमें धूप खेते वो लोग ऐसा डाल के ले जाते ना, तो खाली ऊपर का बाजू है, नीचे भी ऐसे ही रहता है। तो एक हमारे जैसा एक लड़का, मैं बचपन से था वैसा, अभी हमारे से लड़का बोलने से आपको, कि तेल लेने गया तो हाथ में वो बर्तन लेके गया, वो जिस टाइप का मैंने बताया। तो ये किसमें दू? तो बोले ये इसमें दू। तभी तो एक में पैसे में, दो पैसे में जो तेल मिलता था उसने लिया पूरा। तो और क्या चाहिए? बोले घी चाहिए। तो वो अच्छा घी चाहिए, कितना फला इतना, किसमें दूं? ये क्या इसमें डालो। तो उसने इसमें डाला, अरे तेरा तेल तो गिर गया ना। अरे ऐसा करने गया तो हाथ में क्या रहा? ख्याल में है ना, ना तेल रहा ना घी रहा, हाथ में खाली वो दुपट्टा रहा, यानी जो बर्तन है आप समझ लो आपकी भाषा में है। अच्छा वैसा हम क्या करते हैं कि ध्यान किसका करना है उसका पता नहीं है, और हम किसी किसी का ध्यान करते हैं। हा? अभी तो 8:30 बज गए, नहीं तो एक असल बनी हुई बात मैं आपको बताता था, बहुत बार बताई है। एक भाई साहब यहाँ आए थे, हमारे यहाँ नासिक के ही थे, आपके गांव के। वो कह रहे कि भाई मैं गए लगातार इतने सालों से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सम्यक तो नहीं हो रहा है। अच्छा तो क्या करते हैं? मैं सुबह उठते एक कितना अंतर्मुहूर्त यानी पौना घंटा मान लो कि मैं सिद्ध का नाम लेता हूँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, चार साल से लगातार करता हूँ, मुझे आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो उनसे पूछा गया, सिद्धों का नाम तो लेते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिद्धों का स्वरूप तो जानते हो कि नहीं? तो बोले उसकी क्या गरज है, ख्याल में, हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सिद्ध कैसा होगा उससे क्या मतलब है। तो अभी क्या रह गया उनके पास, ना शुभ भाव भी हाथ में आया और ना धर्म भी हुआ। वैसे ध्येय में गड़बड़ है अपनी, हम ध्येय का स्वरूप जानकर उसी में एकाग्र होंगे तो ये पर्याय जो अविकारी जो पर्याय हैं वो उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं। अभी इसी बात को हम कल देखेंगे, ये तो धवल मां आवेश वहां से लेंगे।
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मकन मो सदा देत हो।